नमस्कार, आज हम 2017 के एक ऐसे रिसर्च पेपर पर बात कर रहे हैं जिसने एआई की दुनिया में काफी हलचल मचाई थी। अटेंशन इज ऑल यू नीड, इसी पेपर ने हमें ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर दिया और यही आज जीपीटी जैसे बड़े मॉडलों का बेस है।
हाँ बिल्कुल, और इसने एक पुरानी सोच को तोड़ा।
कौन सी सोच?
कि वाक्यों को समझने के लिए, मतलब सीक्वेंस प्रोसेसिंग के लिए, चीजों को एक क्रम में ही प्रोसेस करना जरूरी है।
अच्छा,
उस समय जैसे मशीन ट्रांसलेशन के काम थे जिन्हें हम सीक्वेंस ट्रांसडक्शन कहते हैं, मतलब एक सीक्वेंस को दूसरे में बदलना।
हाँ,
उसके लिए ज्यादातर RNN यानी रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क या फिर CNN कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल होते थे। इनमें एनकोडर डिकोडर तो होता था और अटेंशन भी जोड़ते थे लोग, पर दिक्कत ये थी कि ये सीक्वेंशियल थे एक एक करके।
तो मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग मुश्किल।
हाँ बिल्कुल, खासकर अगर सीक्वेंस कम्बा हो, आप उन्हें एक साथ कई प्रोसेसर पर ठीक से चला नहीं सकते थे।
तो इस पेपर का मिशन यही था, इस सीक्वेंशियल प्रॉब्लम को हटाना, एक ऐसा मॉडल जो सिर्फ अटेंशन पर चले बिना RNN या CNN के। ये तो मतलब काफी रेडिकल आइडिया था उस वक्त।
हाँ था तो, और उन्होंने ये कर दिखाया। उनका जो ट्रांसफॉर्मर मॉडल था वो न सिर्फ बेहतर रिजल्ट्स लाया बल्कि ट्रेनिंग में भी बहुत तेज निकला, क्योंकि उसे आप बड़े आराम से पैरालाइज कर सकते थे।
अच्छा,
इसने मशीन ट्रांसलेशन में उस टाइम के बेस्ट रिजल्ट्स को भी पीछे छोड़ दिया था।
कमाल है। चलिए थोड़ा ये अटेंशन समझते हैं, ये है क्या असल में और इसमें ये सेल्फ अटेंशन का क्या मतलब हुआ?
अटेंशन मतलब आसान शब्दों में कहें तो मॉडल का ये तय करने का तरीका है कि आउटपुट बनाते समय इनपुट के कौन से हिस्सों पर ज्यादा ध्यान देना है।
जैसे?
जैसे मान लीजिए आप अनुवाद कर रहे हैं, तो किसी एक शब्द का सही मतलब जानने के लिए आपको वाक्य के दूसरे शब्दों पर भी ध्यान देना पड़ता है ना?
हाँ बिल्कुल।
और सेल्फ अटेंशन का मतलब है कि मॉडल एक ही सीक्वेंस के अंदर अलग अलग शब्दों के आपसी कनेक्शन को समझता है, जैसे ये समझना कि वाक्य में उसने किसके लिए कहा गया है। और ट्रांसफॉर्मर की क्रांति यही थी कि ये सिर्फ इसी सेल्फ अटेंशन पे डिपेंड करता है। RNN वाली वो क्रमिक प्रोसेसिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी।
वाह, और इसमें मल्टी हेड अटेंशन का भी जिक्र था, एक से ज्यादा हेड, क्यों?
हाँ मल्टी हेड, सोचिए जैसे किसी चीज को आप एक साथ कई एंगल से देख रहे हो, हर एंगल कुछ अलग दिखाता है, कुछ नई जानकारी देता है। मल्टी हेड अटेंशन भी कुछ वैसा ही है। ये मॉडल को एक ही टाइम पर जानकारी को अलग अलग तरीकों से, मतलब अलग रिप्रेजेंटेशन सबस्पेसेस से देखने और समझने की पावर देता है। शायद एक हेड ग्रामर देख रहा हो, दूसरा मतलब समझ रहा हो, तीसरा कॉन्टेक्स्ट।
अच्छा,
एवरेज आउट हो जाती, वो बारीकियां नहीं पकड़ पाता। और उन्होंने इसमें स्केल्ड डॉट प्रोडक्ट अटेंशन यूज किया। इसमें वो अटेंशन स्कोर को स्केल करते हैं की वेक्टर के डायमेंशन के स्क्वायर रूट से,
रूट डी के वाला फैक्टर।
हाँ वही, ये छोटी सी चीज है पर बड़े मॉडल्स में ग्रेडियंट्स को स्टेबल रखने के लिए बहुत जरूरी है ताकि ट्रेनिंग ठीक से हो पाए।
समझ गया, तो अटेंशन तो ठीक है पर पूरा आर्किटेक्चर फिर कैसा दिखता है बिना RNN CNN के?
इसमें भी एनकोडर और डिकोडर के स्टैक्स हैं, मतलब कई लेयर्स एक के ऊपर एक, लेकिन ये लेयर्स अब बनी है सेल्फ अटेंशन लेयर्स से और सिंपल फीड फॉरवर्ड लेयर से। और ट्रेनिंग को स्टेबल रखने के लिए रेजिडुअल कनेक्शंस और लेयर नॉर्मलाइजेशन जैसी टेक्निक्स भी हैं।
और शब्दों का क्रम ऑर्डर कैसे पता चलता है मॉडल को?
हाँ अच्छा सवाल है, क्योंकि RNN तो है नहीं, तो इसके लिए वो पोजिशनल इनकोडिंग्स को इनपुट एम्बेडिंग्स में जोड़ते हैं। ये बस कुछ फिक्स्ड मैथमेटिकल सिग्नल्स हैं, साइन और कोसाइन फंक्शन से बने हुए, जो हर शब्द को उसकी पोजिशन बताते हैं।
ओके, और इसके फायदे? पेपर की टेबल वन में कुछ कंपैरिजन था शायद।
हाँ, टेबल वन दिखाता है कि सेल्फ अटेंशन लेयर हर शब्द को बाकी सभी शब्दों से एक ही स्टेप में, मतलब कांस्टेंट टाइम में ओ ऑफ वन ऑपरेशन में कनेक्ट कर सकती है।
जबकि RNN को
पूरे सीक्वेंस से गुजरना पड़ता था, मतलब ओ ऑफ एन ऑपरेशंस लगते थे जहां एन सीक्वेंस की लंबाई है।
तो इसका असली मतलब हुआ स्पीड।
जबरदस्त स्पीड।
हाँ
हाँ, स्पीड, मैसिव पैरेललाइजेशन, आप एक लेयर के सारे शब्दों को एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं, ट्रेनिंग कई गुना तेज हो गई। और सिर्फ स्पीड नहीं, लंबी दूरी के शब्दों के बीच कनेक्शन समझना भी आसान हो गया।
वो कैसे?
RNN में सिग्नल को पूरे सीक्वेंस से होकर जाना पड़ता था, दूर के शब्दों तक पहुंचते पहुंचते सिग्नल कमजोर हो सकता था, कनेक्शन सीखना मुश्किल था, ट्रांसफॉर्मर में हर शब्द से हर दूसरे शब्द तक का रास्ता सिर्फ एक स्टेप का है, ओ ऑफ वन पाथ लेंथ। तो लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसी सीखना बहुत आसान हो गया।
हाँ, ये तो बहुत बड़ा फायदा है, और इसने शायद बहुत बड़े मॉडल बनाना भी संभव किया जो पहले प्रैक्टिकल नहीं थे।
बिल्कुल।
परफॉर्मेंस कैसी रही थी इनकी, नतीजे क्या थे?
बहुत अच्छे। उस समय का एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क था WMT 2014, इंग्लिश से जर्मन ट्रांसलेशन। उस पर इसने 28.4 BLU स्कोर हासिल किया। BLU स्कोर अनुवाद की क्वालिटी मापता है, और ये उस समय के बेस्ट मॉडल से करीब 2 BLU पॉइंट्स ज्यादा था।
2 पॉइंट्स? ये तो बहुत बड़ा जंप है।
हाँ, बहुत बड़ा। और इंग्लिश से फ्रेंच में भी 41.0 BLU के साथ नया स्टेट ऑफ द आर्ट सेट किया।
और ये सब कम ट्रेनिंग टाइम में?
हाँ, पहले के मॉडल्स के मुकाबले काफी कम टाइम में, जैसे 8 P100 GPUs पर सिर्फ 3.5 दिन की ट्रेनिंग में। ये उस समय के हिसाब से बहुत तेज था।
तो अगर हम समराइज करें, ट्रांसफॉर्मर ने सिर्फ मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन का इस्तेमाल करके बिना RNN या CNN के सीक्वेंस प्रोसेसिंग में एक तरह की क्रांति ला दी। इसने बड़े पैमाने पर पैरालाइजेशन को मुमकिन बनाया, ट्रेनिंग को तेज किया, और मशीन ट्रांसलेशन जैसे कामों में कमाल के नतीजे दिए।
बिल्कुल सही। और ये तो बस शुरुआत थी। लेखकों ने पेपर में ही लिखा था कि वो इस आर्किटेक्चर को टेक्स्ट के अलावा दूसरी चीजों जैसे इमेज, ऑडियो, वीडियो पर भी लगाने का सोच रहे हैं,
जो आज हम देख ही रहे हैं।
हाँ, और उनका एक और लक्ष्य था कि आउटपुट जनरेशन को कैसे और तेज बनाया जाए, मतलब कम सिक्वेंशियल किया जाए।
दिलचस्प। और जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं, जैसे इस पेपर ने दिखाया कि सीक्वेंस समझने के लिए क्रम में प्रोसेसिंग जरूरी नहीं है। ये एक मान्यता थी जिसे तोड़ा गया। वैसे ही आज AI में और कौन सी ऐसी बुनियादी मान्यताएं या तरीके हो सकते हैं जिन्हें अगर हम चैलेंज करें तो शायद प्रगति के नए रास्ते खुल जाएं। सोचने वाली बात है।